नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय जल आयोग ने गंगा नदी के जलस्तर में पटना और भागलपुर सहित अन्य स्थानों पर तेजी से हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर बाढ़ का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नालंदा जिले की लोकायन नदी का तटबंध टूटने से हिलसा प्रखंड की 6 पंचायतें बाढ़ की चपेट में, जहानाबाद और गया जिले में भी बाढ़ की स्थिति। निर्वाचन आयोग ने कहा SIR के तहत बिहार में अब तक 99.11% मतदाताओं से दस्तावेज प्राप्त हुए, दावों आपत्तियों और दस्तावेज जमा करने के लिए 7 दिन शेष। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज IIT पटना के 12वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय जल आयोग ने प्रदेश में गंगा नदी के जलस्तर में पटना और भागलपुर सहित अन्य स्थानों पर तेजी से हो रही बढ़ोतरी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आयोग ने कई क्षेत्रों में बाढ़ को लेकर चेतावनी जारी की है। जल आयोग ने अपने विशेष बुलेटिन में कहा है कि गंगा नदी का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान को पार कर गया है। ऐसे में लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। आयोग ने कहा कि पटना के गांधी घाट और हाथीदह में नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। आज सुबह भागलपुर के आजमाबाद और कहलगांव में नदी का जलस्तर खतरे के निशान के आसपास दर्ज किया गया। आयोग ने कहा है कि गंगा बेसिन की अन्य नदियों में भी उफान की स्थिति है। खगड़िया में कोसी नदी के जलस्तर में बलतारा में और कटिहार के कुर्सेला में भी तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आयोग ने कहा है कि पुनपुन नदी का जलस्तर अरवर जिले के किंजर में खतरे के निशान से ऊपर दर्ज किया गया है। वहीं पटना जिले में ही पुनपुन नदी का जलस्तर श्रीपालपुर में खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर दर्ज किया गया। सोन नदी के जलस्तर में भी तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है और रोहतास जिले के यदुनाथपुर में ये खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर दर्ज किया गया। पड़ोसी राज्य झारखंड में भारी बारिश के कारण नालंदा, जहानाबाद और गया जिले के कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। नालंदा का हिलसा प्रखंड और गया का बोधगया बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित है। प्रशासन द्वारा लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। इधर जहानाबाद जिले के कई क्षेत्रों में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। समय पर राहत नहीं मिलने से लोगों में आक्रोश भी है। एक रिपोर्ट।
जहानाबाद के कई पंचायत अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। आलमपुर, चैनपुरा, अमैन और पंडुई समेत कई पंचायतों के घरों और रास्तों में पानी भर जाने से दैनिक जीवन मुश्किल हो गया है। खेतों में खड़ी फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इधर समय पर राहत नहीं मिलने के कारण ग्रामीणों में आक्रोश है। प्रशासन ने लोगों को जल समस्या के निदान का आश्वासन दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए जहानाबाद से आभास रंजन।
गया जिले से होकर गुजरने वाली नदियों में भारी उफान से कई क्षेत्रों में बाढ़ का संकट उत्पन्न हो गया है। बोधगया प्रखंड की बसारी पंचायत में मुहाने नदी उफान पर है। इसके कारण बतसपुर, छाछ, घुंघरिया, मोराटाल गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है। प्रभावित लोगों ने स्कूलों में शरण ले रखी है। जिलाधिकारी शशांक शुभांकर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और लोगों तक तुरंत राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। इधर अभियंताओं की टीम क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कार्य में जुटी है। इधर नालंदा जिले की लोकायन नदी का तटबंध टूटने से हिलसा प्रखंड की 6 पंचायतें बाढ़ की चपेट में आ गई हैं। एक रिपोर्ट।
जिले के हिलसा अनुमंडल के खंगरसराय, हिलसा और कराय परसुराय प्रखंड के आधा दर्जन पंचायत से गुजरने वाली लोकायन नदी में हिलसा के 3 पंचायत के अधिकांश गांव के घरों में बाढ़ का पानी अभी भी घुसा हुआ है। बाढ़ में फंसे लोगों के लिए प्रशासन के द्वारा सूखे राशन का वितरण किया जा रहा है। खंगरसराय प्रखंड के लाला बीघा और हिलसा प्रखंड के धूरी बीघा के पास लोकायन का तटबंध टूटने से हिलसा के कुल 6 पंचायत बाढ़ के चपेट में आ गया है। धूरी बीघा गांव के पास तटबंध में कटाव होने से हिलसा प्रखंड के रेड़ी, चिकसौरा, मिर्जापुर, योगीपुर, असाड़ी, कोराबा पंचायत के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में है, जिससे घरों में पानी घुस गया है और कई मुख्य सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए नालंदा से निरंजन कुमार।
इधर कैमूर जिले में कर्मनाशा नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से रामगढ़, दुर्गावती और नुआव प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज प्रदेश के पश्चिम उत्तर पूर्व और दक्षिण मध्य भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान रोहतास, गया और औरंगाबाद जिले में कई स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। इधर मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान गया के खिजरसराय में सबसे अधिक 69.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि प्रदेश में अब तक 99.11% मतदाताओं से दस्तावेज प्राप्त हो गए हैं। वहीं मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत दावों, आपत्तियों और दस्तावेज जमा कराने के लिए अभी 7 दिन शेष हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार दस्तावेजों की दैनिक संग्रह दर 1.64% है। 1 सितंबर तक की समय सीमा निर्धारित होने के बावजूद केवल 0.89% मतदाताओं ने अभी तक अपने दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। आयोग ने कहा कि बूथ स्तरीय अधिकारियों और स्वयंसेवकों की मदद से चलाया जा रहा यह संग्रह अभियान निर्धारित समय से पहले पूरा होने की उम्मीद है। आयोग ने पुष्टि की है कि प्रदेश में SIR प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। पात्रता दस्तावेजों के सत्यापन सहित दावों और आपत्तियों पर सभी निर्णय 25 सितंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे। 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। IIT पटना का 12वां दीक्षांत समारोह का आयोजन आज होगा। दीक्षांत समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि होंगे, जबकि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बतौर विशिष्ट अतिथि विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान करेंगे। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर TN सिंह ने बताया कि इस बार का दीक्षांत समारोह काफी अनूठा होगा, क्योंकि पहली बार ड्यूअल डिग्री और हाइब्रिड पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जाएगी। कुल 1320 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जाएगी।
कुल संख्या 1320 विद्यार्थियों को हम लोग डिग्री दे रहे हैं, जो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD की उपाधि प्राप्त कर रहे हैं। पहली बार जो ड्यूअल डिग्री हम लोगों ने BTech MTech का प्रारंभ किया था, उसका पहला फल आ रहा है, जिसमें कि 8 विद्यार्थी MBA के विद्यार्थियों का 8 विद्यार्थियों को मिल रहा है, जिनको की डिग्री मिलेगी IIT पटना से BTech और MBA IIM मुंबई।
वहीं दीक्षांत समारोह के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पटना के ज्ञान भवन में भाजपा युवा मोर्चा की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। राजगीर में 29 अगस्त से शुरू हो रही एशिया कप पुरुष हॉकी चैंपियनशिप की तैयारी पूरी कर ली गई है। यह चैंपियनशिप मेजर ध्यानचंद को समर्पित है, जिनका जन्म दिवस 29 अगस्त है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कल नई दिल्ली में एशिया कप हॉकी ट्रॉफी का अनावरण किया। इस अवसर पर खेल मंत्रालय के सचिव हरिरंजन राव, पूर्व ओलंपियन जफर इकबाल, अशोक ध्यानचंद और बिहार खेल विभाग के निदेशक महेंद्र कुमार मौजूद थे। इधर चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए भारतीय टीम पटना पहुंच गई है। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि टीम की तैयारी पूरी है और लक्ष्य शानदार प्रदर्शन करना है।
बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हम, क्योंकि जो हमारी प्रैक्टिस सेशन रहा काफी अच्छा रहा। पिछले एक महीने से हम कैंप में थे और उसके बाद हमारा ऑस्ट्रेलिया टूर था, जो कि बहुत अच्छा रहा हमारा, और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि बिहार में आके एशिया कप खेलेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यहीं से हम क्वालिफाई करेंगे वर्ल्ड कप के लिए। सो पूरा फोकस्ड है टीम, कॉन्फिडेंट है टीम, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस करें हम।
कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हॉकी को प्रमोट करने के लिए 30 और 31 अगस्त को राज्य के कई गांवों में दौरा करेंगे। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकरन ने कहा कि राजगीर खेल परिसर एक बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि पुरुषों की एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप से बिहार को खेल आयोजन के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और नई पहचान मिलेगी।
पहली बार बिहार हीरो एशिया कप फॉर मेन ऑर्गेनाइज कर रही है, ये बहुत बड़ा गर्व की बात है बिहार के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी का जो मिशन है कि खेल को एक क्रांतिकारी रूप देने का, उस पर हम लोग पिछले 3 साल से काम कर रहे थे, तो उसका नतीजा है हॉकी इंडिया ने और एशियन हॉकी फेडरेशन ने और FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने बिहार को एशिया कप फॉर मेन हॉकी मेजबानी करने का मौका दिया है। और ये 29 अगस्त से लेके 7 सितंबर तक होने वाला है।
राज्य के 3 शिक्षकों को इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इनमें किशनगंज के सुहागी प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका कुमारी निधि, सुपौल के ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स स्कूल के शिक्षक दिलीप कुमार और सैनिक स्कूल नालंदा के डॉक्टर प्रमोद कुमार शामिल हैं। इधर शिक्षक दिलीप कुमार ने पुरस्कार के लिए चुने जाने के लिए लोगों का आभार प्रकट किया है।
मैं दिलीप कुमार, विज्ञान शिक्षक, +2 ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय त्रिवेणीगंज में पदस्थापित हूँ। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 में चयन होने पर मैं काफी खुश हूँ। इसके लिए विद्यालय परिवार सहित छात्राएं, अभिभावक एवं सभी शिक्षा अधिकारी और जूरी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में इन शिक्षकों को सम्मानित करेंगी। हरतालिका तीज का त्योहार आज पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष तृतीया को ये पर्व मनाया जाता है। इस दौरान महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए उपवास और पूजा अर्चना करती हैं। इधर आज ही मिथिला में चौठ चंद्र का पर्व भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस पर्व में संध्या काल में महिलाएं रोहिणी सहित चंद्रमा की पूजा अर्चना करती हैं। विभिन्न प्रकार के पकवान और फलों को उत्सर्ग कर चंद्रमा को अर्घ समर्पित किया जाता है। इधर इस अवसर पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बधाई दी है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, राजस्व महाअभियान के दौरान हड़ताल पर डटे रहने के मामले में 110 राजस्व कर्मी बर्खास्त। दैनिक जागरण ने पटना में अटल पथ पर हंगामा से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, बच्चों की मौत के मामले में कार्रवाई नहीं होने पर भड़के लोग, मंत्री के काफिले पर पथराव। दैनिक भास्कर लिखता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना शहर की विकास योजनाओं का शुभारंभ किया, मेट्रो शहरों जैसे विकसित होगा पटना, 1056 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रभात खबर का शीर्षक है, एशिया कप के लिए भारतीय हॉकी टीम पटना पहुंची। आज अखबार समेत सभी समाचार पत्रों ने हरतालिका तीज पर्व की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय जल आयोग ने गंगा नदी के जलस्तर में पटना और भागलपुर सहित अन्य स्थानों पर तेजी से हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर बाढ़ का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नालंदा जिले की लोकायन नदी का तटबंध टूटने से हिलसा प्रखंड की 6 पंचायतें बाढ़ की चपेट में, जहानाबाद और गया जिले में भी बाढ़ की स्थिति। निर्वाचन आयोग ने कहा, SIR के तहत बिहार में अब तक 99.11% मतदाताओं से दस्तावेज प्राप्त हुए, दावों आपत्तियों और दस्तावेज जमा करने के लिए 7 दिन शेष। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज IIT पटना के 12वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।